पृष्ठ संख्या 201। लेकिन यह कहना अनुचित है कि मई चतुर्थ आंदोलन सर्वहारा वर्ग के विश्व आंदोलन का भाग था। यद्यपि अनेक चीनी नेता रूसी क्रांति से प्रभावित थे, तथापि यह याद रखना जरूरी है कि चीन के नए विचारों और नए साहित्य का उदय 1916 ईस्वी में हो चुका था, अर्थात 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से पहले। इसके अलावा अनेक तर्कों द्वारा यह विचार भी गलत साबित किया जा सकता है कि मई चतुर्थ आंदोलन रूसी क्रांति और लेनिन के आह्वान के कारण हुआ। चाओ लतुंग का मानना है कि मई चतुर्थ आंदोलन एक बौद्धिक और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था, जो चीन के आधुनिकीकरण द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक उचित समाज की स्थापना करना चाहता था। चाओ के अनुसार यह इसलिए एक बौद्धिक आंदोलन था क्योंकि यह इस मत पर आधारित था कि आधुनिकीकरण के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक थे। इसने अनेकों सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी बढ़ावा दिया। मई चतुर्थ के नेताओं का विश्वास था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के पहले विचारों और संस्थाओं का परिवर्तन आवश्यक था। अतः इन लोगों ने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक सिद्धांतों पर प्रहार किया। मई चतुर्थ आंदोलन के पश्चात चीन में स्वतंत्र समाजवादी राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, जो देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता के सिद्धांतों पर आधारित था। युवा बुद्धिजीवियों ने विश्व राजनीति और योद्धा सामंतवाद से टक्कर लेने के लिए जन आंदोलन, संगठन और क्रांतिकारी अनुशासन को आवश्यक बताया। संक्षेप में, मई चतुर्थ आंदोलन का मूलभूत स्वरूप परंपरावादी था। आंदोलन से पहले और बाद की चीनी स्थिति को देखते हुए यह कहना असंगत नहीं होगा कि चीन में मौलिक बौद्धिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन आ गए थे। मई चतुर्थ आंदोलन का महत्व भी विवादास्पद है। उदारवादियों के अनुसार यह आंदोलन पुरानी धारणाओं, पुराने विचारों और पुराने मूल्यों से स्वतंत्रता को दर्शाता है और मानवीय अधिकारों की पुष्टि करता है। अनुदारवादियों का मानना है कि इस आंदोलन का युवा वर्ग पर गलत प्रभाव पड़ा क्योंकि वे परंपरा विरोधी हो गए थे। फिर भी उन्होंने इस आंदोलन के राष्ट्रीय स्वरूप को सराहा। उग्र सुधारवादियों ने इस आंदोलन को देश प्रेम से ओतप्रोत बताया तथा इसे मानवीय स्वतंत्रता का भाग बताया। माओ ने इसे साम्राज्यवाद विरोधी और सामंत बुर्जुआ विरोधी प्रजातांत्रिक आंदोलन की संज्ञा दी, जिसमें श्रमिकों, विद्यार्थियों और राष्ट्रीय बुर्जुआओं ने भाग लिया और बुद्धिजीवियों ने नेतृत्व प्रदान किया। इन सभी विवादों के बावजूद वास्तविकता यह है कि मई चतुर्थ आंदोलन मुख्यतः बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत मुक्ति और नई संस्कृति की स्थापना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आंदोलन राष्ट्रीय धरोहर और विदेशी सभ्यता का वैज्ञानिक विश्लेषण और समीक्षा करना चाहता था। इमैनुअल स्यू ने मई चतुर्थ आंदोलन की तीन उपलब्धियां बताई हैं। पहला पहला साहित्यिक आंदोलन के कारण 1920 ईस्वी में सादी भाषा, प्लेन लैंग्वेज की स्थापना हुई और नए साहित्य का विकास हुआ, जो मानवतावाद, छायावाद, यथार्थवाद और राष्ट्रवाद पर आधारित था। दूसरा, विदेशी विचारों के आगमन से सामाजिक पुनःरचना और राष्ट्रीय पुनरुत्थान को लेकर दो पारस्परिक विरोधी मतों का आगमन हुआ, हुसरा का धृष्टतावाद और क्रमिक सिद्धांत, जिसे बाद में राष्ट्रीय पार्टी ने स्वीकार किया, और मार्क्सवादी क्रांतिकारी सिद्धांत, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का आधार था। तीसरा, राष्ट्रीयता के उदय ने एक नए चीन को जन्म दिया, जो समकालीन विश्व में अपनी निरीह स्थिति से अवगत था और अपने भाग्य का फैसला खुद करना चाहता था। ऊपर लिखित महत्वों के अलावा मई चतुर्थ आंदोलन अन्य कारणों से भी काफी महत्वपूर्ण है। चीनी बुद्धिजीवियों ने पहली बार परंपरावादी चीनी सभ्यता को परिवर्तित करने की सोची। नए बुद्धिजीवियों ने न केवल पश्चिमी वैज्ञानिक, तकनीकी कानून और राजनीतिक संस्थाओं को चीन में लाना चाहा, बल्कि चीनी दर्शन, नीति, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक सिद्धांतों और संस्थाओं का पुनः मूल्यांकन करना चाहा। मई चतुर्थ आंदोलन ने चीनी बुद्धिजीवियों को व्यक्तिगत मानवीय अधिकारों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से भी अवगत कराया। साथ ही चूंकि आंदोलन चीन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन लाया, अतः आधुनिक चीन को जानने के लिए इसने दर्पण का काम किया। इस आंदोलन ने इतने सारे विवादों और सिद्धांतों को जन्म दिया कि आंदोलन की जानकारी के बिना सिद्धांतों की उत्पत्ति को समझना असंभव है। सच तो यह है कि समकालीन चीनी राजनीतिक स्थिति भी सीधी या परोक्ष ढंग से इस आंदोलन से संबंधित है। चीन के पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को भी इस आंदोलन के बिना नहीं समझा जा सकता। चीनी संस्कृति और समाज पर पश्चिमी सिद्धांतों, उदारवाद, प्रजातंत्र, विज्ञान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। फिर भी बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना, जिसे रूस की बढ़ती शक्ति ने प्रभावित किया, के कारण बाद के वर्षों में समाजवादी विचारधाराएं अधिक फैली। मई चतुर्थ आंदोलन में विद्यार्थियों ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने सरकार का विरोध किया, पुलिस से लड़ाई की, जापान विरोधी पर्चे बांटे और 10 का राष्ट्रीय मुक्ति गुट, ग्रुप ऑफ 10 फॉर नेशनल सेल्वेशन नामक संस्था स्थापित की। मई चतुर्थ आंदोलन ने औरतों के अधिकारों की भी रक्षा करने की कोशिश की और उन्हें पुराने रीति रिवाजों के अनुसार शादी करने से मना किया। मई चतुर्थ आंदोलन काल में अनेक बौद्धिक विचारों का उदय हुआ। उदाहरण के रूप में अमेरिका के जॉन डीवी का धृष्टतावाद, बर्टांड रसल का उदारवाद, समाजवाद, लिबरलिज्म एंड सोशियलिज्म, जापान का नया ग्रामीण प्रकोष्ठवाद, यूटोपियानिज्म ऑफ न्यू विलेज, रविन्द्रनाथ टैगोर का पूर्वी आदर्शवाद, आइडियलिज्म ऑफ द ईस्ट, कोपैटकिन का अराजकतावाद, लियो टॉल्स्टॉय और रोमेन रोलैंड का मानवतावाद और मार्क्सवाद तथा एंगल का वैज्ञानिक समाजवाद। मई चतुर्थ आंदोलन पश्चिम प्रभाव के प्रति चीनी नीति के तृतीय चरण को व्यक्त करता है। पहला चरण स्वतः सुदृढ़ीकरण आंदोलन 1861 से 1895 ईस्वी मुख्यतः सेना के आधुनिकीकरण को दर्शाता है। दूसरा चरण सुधार आंदोलन 1898 से 1912 मुख्यतः पश्चिमी राजनीतिक संस्थापकों को मुख्यतः पश्चिमी राजनीतिक संस्थापकों की स्थापना को दर्शाता है। तीसरा बौद्धिक चरण पूर्व पश्चिमीकरण को दर्शाता है। अतः 1920 ईस्वी तक चीन आधुनिक विश्व का एक भाग बन चुका था। मई चतुर्थ आंदोलन पश्चिम प्रभाव के प्रति चीनी नीति के तृतीय चरण को व्यक्त करता है। पहला चरण स्वतः सुदृढ़ीकरण आंदोलन 1861 से 1895 ईस्वी मुख्यतः सेना के आधुनिकीकरण को दर्शाता है। दूसरा चरण सुधार आंदोलन 1898 से 1912 ईस्वी मुख्यतः पश्चिमी राजनीतिक संस्थापकों की स्थापना को दर्शाता है। तीसरा चरण बौद्धिक जागरण 1917 से 23 पूर्ण पश्चिमीकरण को दर्शाता है। अतः 1920 ईस्वी तक चीन आधुनिक विश्व का एक भाग बन चुका था। विचारों के क्षेत्र में क्रांति के साथ साथ मानवतावाद, छायावाद और यथार्थवाद पर आधारित साहित्य का जन्म हुआ और छापाखाना और शिक्षा के विकास ने इसे बढ़ावा दिया। इस आंदोलन का प्रभाव चित्रकारी, मूर्तिकला, संगीत आदि क्षेत्रों पर भी पड़ा। मई चतुर्थ आंदोलन के फलस्वरूप स्कूलों में आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी। नए राष्ट्रीय उद्योगों को जरूरतों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। चीन में आधुनिक अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र की नींव पड़ी। जीव विज्ञान, भूगोल शास्त्र, मौसम विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रगति हुई। मई चतुर्थ आंदोलन के कारण समाज में अनेक परिवर्तन आए। परंपरा पर आधारित परिवार प्रणाली का पतन हुआ। प्रेम विवाह की शुरुआत हुई। चीनी युवा वर्ग अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग और सचेत हो गए। औरतों की स्थिति में सुधार हुआ। सह शिक्षा की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के कारण औरतें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय हो गई। मई चतुर्थ आंदोलन चीनी अर्थव्यवस्था में भी अनेक परिवर्तन लाया। जमींदारों की शक्ति में कमी आई। किसानों के उपद्रव बढ़ गए। शहरवासी राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय हो गए और श्रमिकों की समस्याओं को अधिक महत्व दिया जाने लगा। युवा बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में श्रमिक आंदोलन अधिक सक्रिय और शक्तिशाली हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में मई चतुर्थ आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक दलों के नए विचारों और सिद्धांतों के आधार पर संगठित किया गया। राजनीतिक दलों ने आम जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहा तथा वह सामाजिक समस्याओं पर अधिक ध्यान देने लगे। राजनीतिक दलों ने समाजवाद, प्रजातंत्र, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचारों को अपनाया और योद्धा सामंतवाद, साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक नीति की निंदा की। मई चतुर्थ आंदोलन के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम थे, पहला जापान विरोधी भावना में वृद्धि और दूसरा चीन की योद्धा सामंतवादी सरकार से असंतुष्टि। कुओमिंतांग ने भी मई चतुर्थ आंदोलन के नारे साम्राज्यवाद और योद्धा सामंतवाद से देश को बचाओ को अपनाया। मई चतुर्थ आंदोलन की कुछ त्रुटियां भी थी। पुरानी परंपरा पर आक्रमण के कारण कन्फ्यूशियसवाद और राष्ट्रीय धरोहर की अनेक अच्छी विशेषताएं दफना दी गई। शिव के अनुसार मई चतुर्थ आंदोलन ने भविष्य को संवारने से अधिक अतीत को तबाह किया। द मई फोर्थ मूवमेंट हैड बीन फार मोर इफेक्टिव एट डिस्ट्रॉइंग द पास्ट देन एट कंस्ट्रक्टिंग द फ्यूचर। मौलिक विचारों और सिद्धांतों की जगह मई चतुर्थ आंदोलन ने मुख्यतः पश्चिमी विचारों को अपनाया और चीनी संस्कृति को धक्का पहुंचाया। बेंजामिन आई श्वार्ज के अनुसार यह आंदोलन चीनी इतिहास में एक विभाजक रेखा नहीं थी, यह कोई नई शुरुआत नहीं थी। लेकिन सावर्त जी का कथन तर्कसंगत नहीं है। मई चतुर्थ आंदोलन अवश्य ही एक विभाजक रेखा थी। इसने चीन और विश्व के प्रति चीनियों के व्यवहार को बदल डाला था। इस आंदोलन ने निर्दयता के साथ चीनी वास्तविकता को उभारा था। इसलिए समकालीन चीनी इतिहासकार मई चतुर्थ आंदोलन को अपने देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं।